ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवेष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आज सबका आज एकादशी के दिन इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। एकादशी के दिन हम लोग श्रीला प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं और प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम प्रभुपाद के विषय में ज्यादा जान सके, प्रभुपाद के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सके। एक बार वृंदावन में जोड़ीनाथ लोकनाथ गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे, तो प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस थे, तो बता रहे थे कि टू बी कृष्णा कॉन्शियस मीन्स टू बी प्रभुपाद कॉन्शियस। अगर हमने कृष्णा भावनामृत होना है तो इसलिए सबसे सरल तरीका क्या है कि प्रभुपाद भावनामृत हो जाए, क्योंकि जब तक प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु हैं और आज प्रभुपाद की ही कृपा है कि आज हम इस स्थिति पे हैं। हम सब लोगों को अपने प्री इस्कॉन डेज के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमारी मानसिकता थी, क्या हमारे जीवन की प्रायोरिटीज थी, किस तरह की हमारी जीवन शैली थी, और ये प्रभुपाद की असीम कृपा से हमारी कितनी गलत धारणाएं दूर हो रही हैं और हम जीवन के लक्ष्य को जान पा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। गुरु से हमारे संबंध केवल आदर के नहीं होने चाहिए कि हाँ दूर से हम गुरु को आदर करें बस। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्रेम में संबंध होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा गुरु से आचार्यों से तो फिर कृष्ण से प्रेम कैसे हो सकता है। गुरु परंपरा के माध्यम से ही कृष्ण से संबंध बनेगा, पहले गुरु परंपरा से संबंध जुड़ेगा फिर कृष्ण से संबंध जुड़ेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के विषय में केवल भावुकता के स्तर पर ही स्नेह नहीं होना चाहिए, वास्तविकता के स्तर पर हम जाने कि प्रभुपाद का जीवन कैसा था। प्रभुपाद कृष्ण के द्वारा भेजे हुए विशेष दूत हैं, आध्यात्मिक दूत हैं, हम सबके उद्धार करे प्रभुपाद यहां प्रकट हुए। भगवान तो प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन उस धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान को अपने भक्तों को भेजना पड़ता है। प्रचार तो भगवान के भक्त ही करते हैं। अगर आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ठीक है, उसके बाद कोई भक्त आ ही नहीं रहे उनका प्रचार करने के लिए, तो हम तक गीता का संदेश कैसे पहुंचेगा। गीता का संदेश तो गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचा है, फिर हम लोगों का कर्तव्य इसको और आगे पहुंचाए, तभी तो हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो ये भगवान के भेजे हुए जो नित्य सिद्ध जीव है ये भगवान के मिशन को पूरा करते हैं। इसीलिए कई बार शास्त्रों में भगवान के शुद्ध भक्तों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। श्रीमद् भागवत में शुद्धे गोस्वामी को भगवान कहकर संबोधित किया गया, नारद मुनि को भगवान कहकर संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि उनके मिशन में और भगवान के मिशन में कोई अंतर नहीं है। ये मायावादी कंसेप्ट नहीं है कि हमको भगवान कह रहे हैं, लेकिन उनके मिशन में भगवान के मिशन में कोई अंतर ही नहीं है। और दूसरा, क्योंकि अपने हृदय में भगवान लेकर घूमते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान है और भगवान शरण शौर्य पूर्ण है, तो वो भगवान है। इस ढंग से तो विशेष इन भक्तों के माध्यम से ही धर्म का प्रचार होता है। इसलिए हम सब भक्तों को जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हमें प्रभुपाद लीलामृत और प्रभुपाद के विषय में उनके शिष्य ने बहुत से सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं जिसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं प्रभुपाद के विषय में, उनके प्रभुपाद के विषय में साक्षात्कार हैं जिनको पढ़ के हमारी प्रभुपाद में श्रद्धा और बढ़ती है। अब ऐसे कितने भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ा हुआ है? बहुत कम परसेंटेज है। कितने भक्तों ने एक बारी से ज्यादा पढ़ा है प्रभुपाद लीलामृत? गुड। जिन भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ नहीं पढ़ा प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए। कितने भक्तों के पास प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है ही नहीं? तुरंत लीजिए, आज ही लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। एकादशी के दिन निश्चित से प्लीज आप लीजिए। प्रभुपाद के एक शिष्य हैं हिजोलिनेस शिवराम स्वामी महाराज, नाम सुने, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और कहाँ पे इनका हंगरी में बहुत अच्छा उनका फॉर्म कम्युनिटी है। अभी पिछले साल उन्होंने प्रभुपाद आविर्भाव दिवस पे प्रभुपाद की व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखा कि प्रभुपाद आई हैव रेड योर लीलामृत 14 times। इतने बड़े महाराज हैं और जीबीसी हैं और इतने व्यस्त रहते हैं और बोल रहे हैं कि मैंने आपकी लीलामृत 14 बार ही पढ़ी है और जब भी मैं आपकी लीलामृत पढ़ता हूं मैं एकदम अचंभित रह जाता हूं। आई एम अमेज्ड कि किस ढंग से आपने इस मोमेंट को खड़ा किया। एकदम हम पढ़ेंगे, जब लीलामृत पढ़ेंगे तो सभी तरह के रोमांच के लक्षण हम अनुभव कर पाएंगे, आंखों से अश्रु बहेंगे, बाल खड़े हो जाएंगे और प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता बढ़ेगी। ये महसूस करने वाली बात है, ये रियलाइज करने वाली बात है। तो इसलिए इस सुंदर अनुभव से हम वंचित ना रहे। एक बार ही पढ़ लिया और पढ़े, और लीला में पढ़ लिया तो प्रभुपाद के विषय में और बहुत से ग्रंथ हैं, उसको लें और पढ़ें, कंटिन्यूअस पढ़ते रहे और पढ़ के दूसरों को बताते रहे, चर्चा करते रहे, हमारा भी शुद्धिकरण दूसरों का भी शुद्धिकरण। तो इसीलिए हम लोग इस कौन के कई मंदिरों में एकादशी के दिन लीलामृत का पाठ किया जाता है। और ये लीलामृत का पाठ वाली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानेंगे प्रभुपाद ने कितने कितने संघर्ष करके इस मोमेंट को खड़ा किया। आज तो हमें सब कुछ प्लेट में सब कुछ तैयार मिल रहा है, सुंदर सुंदर पकवान हमारे लिए है, हम तो आराम से, जो आज हमारा लाइफ स्टाइल है बहुत डीलक्स भक्ति हो रही है हमारे। कई बार चर्चा करते हैं कि ढूंढने पर भी हमें अपने जीवन में तपस्या दिखाई नहीं देती क्योंकि सब कुछ इतना फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है कि फौरन भक्ति मेड इजी कर दिया प्रभुपाद ने। 16 होना का जब 4 नियम का पालन और उसके लिए इतनी सुविधाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए हमें एक सेंटर मिल जाता है, वहां प्रसाद मिल जाते हैं, वहां भक्त मिल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद के बारे में सोचिए, कुछ भी ऐसा नहीं था, अकेले थे और सब कुछ प्रभुपाद ने खड़ा किया। तो इसलिए ये हमें प्रभुपाद के विषय में जानना, सुनना, पढ़ना बहुत हमारे लिए लाभकारी होगा। तो पिछली बारी से जो हमने कुछ पढ़ा था तो प्रसंग चल रहा था, बात है 1975 की और प्रभुपाद अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में, और प्रभुपाद से मिलने अलग अलग धर्म के आचार्य आते हैं, जिसमें चमक ये बर्कले में है प्रभुपाद, और उसमें HHH फाउंडेशन के संस्थापक योगी भजन, ये सिखों की सोसाइटी थी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन के अध्यक्ष जैन नेता स्वामी सुशील मुनि, तो ये सब आए थे और प्रभुपाद को निमंत्रण देने आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। इंटर फेथ कॉन्फ्रेंस थी, सभी धर्म के जो आचार्यगण थे इकट्ठे हो रहे थे, तो सब प्रभुपाद को निमंत्रण देने आए थे। तो उस निमंत्रण के दौरान जो जैन जी के, जैन संप्रदाय के आचार्य थे स्वामी सुशील मुनि, उन्हें प्रभुपाद का बहुत गुणगान किया कि कैसे आपने इतने आश्चर्यजनक ढंग से इस पूरे अपने आंदोलन को फैलाया है। और फिर उन्होंने पूछा था कि ये कैसे इतने युवा वर्ग आपके आंदोलन से आकर्षित हो रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। प्रभुपाद ने बोला था कि दिल्ली में सबसे लोकप्रिय मिठाई की दुकान वह है जहां हर चीज शुद्ध घी में बनाई जाती है। प्रभुपाद ने कहा यदि चीज अच्छी है तो ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद का देखिए ट्रांसजेंडर प्राइड है, प्रभुपाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग आएंगे ही आएंगे, है ना। दिल्ली में पता नहीं कौन सी मिठाई की दुकान बात कर रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन ओल्ड दिल्ली की भी होगी लगता है मुझे। तो उन्होंने आगे बताया कि उनकी शिक्षाएं केवल भगवत गीता पर आधारित थी। वो भगवत पर आधारित कौन सी शिक्षाएं हैं? कृष्ण को आत्मसमर्पण। जब स्वामी सुशील ने पूछा कि प्रभुपाद अपने अनुयायियों को कृष्ण की शरण में किस तरह ले गए, ये कोई आसान नहीं है, हिप्पीज को भगवान की शरण में ले जाना कैसे ये संभव है, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया यह ईश्वर ने किया है। ईश्वर कहते हैं माम एकम शरणम व्रत। यह ईश्वर ने किया है, ईश्वर कहते हैं माम एकम शरणम व्रत, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी शरण में जाएं। भगवान चैतन्य कहते हैं जारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, अर्थात आप जिससे मिले उसको कृष्ण की गीता में कही गई शिक्षाओं का उपदेश दें। मेरा कोई उपदेश नहीं है, यह सब केवल कृष्ण का उपदेश है। हम सभी मूढ़ हैं, हमारे पास कोई उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए जो कृष्ण की शिक्षाएं हैं हम उन्हीं को कहते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इस तरह करो और हम उसी तरह करते हैं, यही हमारा रहस्य है। मैं इसी तरह करता हूं और सभी लोगों को वही सिखाता हूं। मैं निर्मित धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हूं एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे कृष्ण कहते हैं। पैराग्राफ सुना सबने ध्यान से? प्रश्न पूछे आपसे, प्रश्न ये है कि यहां प्रभुपाद अपने रहस्य, अपनी सफलता का रहस्य बता रहे हैं, यानी कि एक प्रचारक को सफल होने के लिए क्या मानसिकता होनी चाहिए, बताइए क्या क्या बताया प्रोग्राम में। यस माता जी बताइए, आप बोलिए हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट पर ग्रेट विश्वास और प्रोपान में क्या मानसिकता बताइए सर। यस जैसे कौन रहे आचार्य परंपरा से प्राप्त शुद्ध ज्ञान को मैंने आगे बढ़ाया। यस रसिक बापू, हाँ, तो जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा हम दोहराते हैं, अपने आप से कुछ निर्मित नहीं करते। यस बापू, हाँ, तो इसमें क्या सफलता क्या है? हाँ, सेल्फ मेड रिलीजन नहीं है, भगवान की शरण में लेके आना, क्योंकि भगवान यही कह रहे हैं माम एकम, केवल मेरी शरण में आना। यस प्रभु जी, हैं, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण एक प्रचारक का, यस आप कह रहे थे सेठी अपनी तरफ से हम कुछ निर्मित करके नहीं कह रहे। तो ये देखिए यहाँ छोटे से पैराग्राफ में प्रभुपाद ने हमें बताया है कि प्रचारक की कैसे मानसिकता होनी चाहिए। तो हम सबको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, सुशील मुनि जो है प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपने कैसे कर दिया। पहले उन्होंने पूछा कि ये सारे युवा कैसे आए आपके पास। प्रभुपाद ने बोला हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो बोला कि क्या प्रोडक्ट है आपका। तो उन्होंने बोला हमारी जो शिक्षाएं हैं वो भगवदगीता पर आधारित हैं, और भगवदगीता पर आधारित शिक्षाएं क्या है, कृष्ण को आत्मसमर्पण। तो बोले आत्मसमर्पण कैसे कराया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने नहीं कराया, कोई क्रेडिट ही नहीं ले रहे। तो एक प्रीचर जो है प्रचारक कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लेता सफलता का। इतनी सफलता 1975 की बात है और प्रभुपाद बहुत सफल है और सब उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन सब जो मिसगाइडेड यूथ थे, हिप्पीज थे, इनको मैं कृष्ण के शरण में लेके आया, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वर ने किया, सीधी बात, मैंने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो सारा का सारा क्रेडिट प्रभुपाद भगवान को दे रहे हैं और पूर्ववर्ती आचार्य को दे रहे हैं। ये प्रभुपाद की विनम्रता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचारक को अपने आप को कैसे समझना चाहिए, पोस्टल पीएम के समान, डाकिये के समान, कि मैं तो केवल संदेश लाता हूं और संदेश आगे देता हूं। और इसी मानसिकता के साथ हम भगवत गीता के संदेश को यथारूप दे सकते हैं। जितनी हमारी मानसिकता इसके निकट होगी कि मैं केवल एक डाकिया हूं और कुछ नहीं, उतनी ही शुद्धता के साथ हमारा संदेश दूसरों के हृदय में प्रवेश करेगा। अगर हमने आपको अपने आप को यह संदेश देते हुए इस स्थिति से थोड़ा सा भी ऊपर समझ लिया कि देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूं, कितनी तरीके से मैं संदेश देता हूं, ये तो सब मेरे कुशलता के कारण ही ऐसा हो रहा है कि देखिए कितने लोगों को मैंने भक्ति में जोड़ दिया। अगर थोड़ी सी भी मानसिकता है तो हम क्या देखेंगे, वो संदेश में शुद्धता नहीं रहेगी, लोगों के हृदय में वो क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा। प्रभुपाद की सफलता का एकमात्र यही कारण है, इतनी बड़ी क्रांति लोगों के हृदय में, जो हिप्पीज थे जो 24-24 घंटों में से 18 घंटे सोते ही रहते थे, अब वो 24 घंटे में 48 घंटे की सेवा करते थे भाग भाग के। कैसे संभव है, कैसे इतना क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रभुपाद ने यथारूप, प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम यथारूप एज इट इज केवल नाम के लिए नहीं रखा, एज इट इज वो है, ये प्रभुपाद की मानसिकता है। और प्रभुपाद इसके लिए अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं हम अपना क्या संदेश देंगे, हम तो मूड है, कौन इतने बड़े आचार्य की स्थिति में पहुंच के ये एक्सेप्ट करेगा दूसरे आचार्यों के सामने कि मैं मूल हूं। वो पूछ रहे हैं आप बहुत सफल हैं, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं तो मूर्ख हूं। बिल्कुल ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको संदेश दिया कि हमें अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए, ये सबसे बड़ी बुद्धिमता है अपने आप को मूर्ख मानना, और अपने आप को बुद्धिमान मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस बौद्ध जगत में हर व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत स्पेशल हूं और मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है, और यही हम मार खाते हैं, तभी हमारे अंदर हृदय संदेश प्रवेश ही नहीं करता। पहले से हमारा इनकार बढ़ा हुआ कि हम बहुत बुद्धिमान है। प्रभुपाद उस स्थिति में बोल रहे नहीं, मैं तो बहुत मूढ़ हूं, मैं अपना क्या संदेश दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो केवल ये तो सब ईश्वर ने किया। प्रभुपाद केवल भगवान को और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को ही क्रेडिट नहीं देते। एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूं, अयोग्य हूं, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था 1922 में, और मैंने ये प्रयास, मैंने जो बाहर आ पाया अमेरिका में 1965 में, 43 साल मैंने वेस्ट कर दिए, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, वर्थलेस। ये तो मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने जबरदस्ती मुझे सेवा में लगाया, उन्होंने मुझे फोर्स किया और यहां पकड़ के ले आए, और वो जानते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नालायक हूं, अयोग्य हूं, इसलिए मेरी सहायता करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने आप सबको भेजा है। तो प्रभुपाद सारा का सारा क्रेडिट दे रहे हैं अपने शिष्यों को कि मेरे गुरु महाराज ने आप सबको मेरे पास भेजा है ताकि मैं उनके मिशन को पूरा कर सकूं, क्योंकि वो जानते हैं मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि उनकी आज्ञा को पूरी कर पाऊंगा। तो ये एक प्रचारक के लिए ये विनम्रता है। जितनी ज्यादा हम अपने जीवन में विनम्रता की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा हमें एम्पावरमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा हमें आवेश मिलेगा प्रचार करने के लिए। और जितना हम सोचेंगे नहीं हम एक स्पेशल प्रचारक है, हम उस आवेश को, कृपा को हम ब्लॉक करते हैं। सो प्रभुपाद अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि सारा क्रेडिट भगवान को, भगवान के भक्तों को, अपने पूर्ववर्ती आचार्य को, अपने शिष्यों को। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूं, है ना। तो ये बहुत सुंदर ऋषि रंगसंग देखते हैं कि प्रभुपाद भक्ति में सामने सिंधु के इंट्रोडक्शन में भी यही बात लिख रहे हैं, और वहां प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि सब कुछ जो है रूप गोस्वामी जी का ये जो है निर्देश है, मैं इट इज दोहरा रहा हूँ। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक प्रचारक को हमेशा इसी मानसिकता में रहना चाहिए कि मैं तो केवल संदेश दोहरा रहा हूं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं सबके सामने। और इसके बाद स्वामी सुशील के इस प्रश्न के उत्तर में, जन जन को एक दूसरे के पास कैसे लाया जा सकता है, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक सुनाया जिसमें संसार की विभिन्न जातियों का उल्लेख है और कहा गया है कि उन्हें कृष्ण के शुद्ध भक्त की शरण में ले जाकर शुद्ध किया जा सकता है। कौन सा श्लोक है यह? किरात हनंदर, जिसमें जो शूद्र से भी जो निम्न जातियां हैं उन सबका वर्णन किया गया है और बताया गया सब जातियों को उद्धार हो सकता है। ये सब जातियां प्रभुपाद भागवतम के दूसरे स्कंध में श्लोक आता है और उसमें बताया गया है किराट, हनंदर, पुलंद और कौन से हैं प्रभु? खास जोर से बोलिए श्याम कृष्ण प्रभु, श्लोक हमें याद नहीं, आप सुनाइए प्लीज। जाए धन्यवाद सर। प्रभा बताने से तात्पर्य में कि जो किराट, उनंदर, खस, ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब कोई जर्मनी में है अभी इस समय, कोई कोरियंस हैं, कोई फिलीपींस हैं, सब आप जिनके लिए हम, जिनकी हम नकल मारते हैं, जिनको आजकल हम कॉपी कर रहे हैं, ये सारे भागवतम में बताए ग्रीस में है। ये सारी वो जातियां हैं जो कि बिल्कुल निकृष्ट है, ये चंडाल के समान की सब जातियां हैं। और बताया गया कि इन सबका भी उद्धार हो जाएगा अगर इनको किसी शुद्ध भक्त की शरण में ले आएंगे। जय श्री राधा राधिका रमन, श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ की जय। तो स्वामी सुशील जी ने पूछा कि जन जन को एक दूसरे के पास कैसे लाया सकता है, तो प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं कि इसमें तो भागवतम में पहले से ही घोषणा है कि भागवतम में बताया गया है कि सभी तरह की निम्न से निम्न जातियां भी अगर एक शुद्ध भक्त की शरण देती हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकली देखा तो इस तरह से ये श्लोक है, ये प्रभुपाद के आविर्भाव की घोषणा भी करता है। ये जो श्लोक है आप देखें, हम बोलते हैं कि भगवान का अवतार होंगे, भगवान के विशेष अवतारों को हम कैसे माने कि ये अवतार प्रमाणिक है कि नहीं, तो कैसे मालूम चलता है? शास्त्रों के आधार पे। हम कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक राजदूत हैं तो बोलेंगे कितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, हर कोई बोलता है, आजकल तथाकथित गुरु जेल में हैं तब भी वो बोलते हैं उनकी लीला चल रही है ना, ये तो बहुत विशेष व्यक्ति हैं, इनको साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं सकता कोई। आपको लग रहा है वो जेल में नहीं है, कहीं और है, इसका कुछ उद्देश्य है, कोई खास लीला है। हर कोई जो अपने तरह तरह के धार्मिक संस्थान है अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके जो आचार्य हैं तथाकथित आचार्य बहुत विशेष व्यक्ति हैं, साक्षात भगवान के समान है या साक्षात भगवान ही है। लेकिन हम भी कह रहे हैं नहीं, प्रभुपाद भी आध्यात्मिक राज होते हैं और भी भगवान के समान उनको आदर देना चाहिए, तो बोले क्या अंतर है? तो हम जो कह रहे हैं हम शास्त्रों पर आधारित कह रहे हैं। ये जो श्लोक है कि निम्न से निम्न जाति के लोग को भी उद्धार हो जाएगा जब वो शुद्ध भक्त की शरण में आएंगे। तो देखिए श्रीमद् भागवतम का संदेश तो बहुत पुराना है, 5000 वर्ष पूर्व से ये भागवतम का संदेश दिया गया, कलयुग में जो प्रकट हुआ उसके बाद से ऐसी क्रांति पूरे विश्व में कभी नहीं आई कि जन जन तरह तरह जाति के लोग भगवान की शरण ले रहे हैं। हुआ ऐसे पहले? ये प्रभुपाद के आने से ही संभव हुआ। तो ये श्लोक क्या प्रभुपाद के प्रकटे की घोषणा नहीं करता? करता है कि नहीं करता बताइए? बिल्कुल करता है। इसी ढंग से भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें बताया तद्वार विसर्गो, जो जो भगवान के संदेश के लिए संकलन करते हैं अलग अलग शास्त्रों की, उन शास्त्रों में अगर थोड़े से दोष भी हों, लेकिन वो शास्त्र अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं कि पूरे विश्व में वो क्रांति लाएंगे। सुने आपने श्लोक? तो ये पूरे विश्व में क्रांति लाई जाएगी, ये भागवतम का संदेश क्रांति लाएगा, ये घोषणा की है श्रीमद भागवतम में। अब भागवतम का संदेश 5000 वर्ष पुराना है, अभी तक तो कोई क्रांति आई नहीं थी प्रभुपाद जी के आने से पहले, और प्रभुपाद के प्रकट होते पूरे विश्व में क्रांति आ रही है। तो क्या ये मालूम नहीं चलता कि ये प्रभुपाद के प्रकट की घोषणा की गई है? चलता कि नहीं चलता? आप लोगों को जान के सुन के ज्यादा रोमांच नहीं हो रहा? कोई खास बात थोड़ी है, तो बड़ी अजी आम सी बात है। हम सबके नाम भी लिखे हुए भागवतम में, लिखे हुए ना कलयुग के लोगों के लक्षण क्या होंगे, लिखा कि नहीं लिखा? और ये लिखा कि अलग अलग जाति में लोगों उद्धार कैसे होगा शुद्ध भक्त के आगमन से, और वो शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद है। ठीक है, हम तो रोज प्रभुपाद को देखते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, खुशी होनी चाहिए हमें, और हमें अपने सौभाग्य को धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि किस भक्ति हम शरण में है। हरि बोल, ये उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि अभी अगले वर्ष से ही हम लोग मनाएंगे इस्कॉन की गोल्डन जुबली 1966 में, बल्कि इस वर्ष से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। 13 अगस्त 1965 में प्रभुपाद ने जलदूत पकड़ा था कलकत्ता से, और इसी वर्ष में 13 अगस्त से 2015 से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। कलकत्ता मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होगा, और उसके बाद से अगले वर्ष से ये सेलिब्रेशन चलेंगे पूरे विश्व भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जोर शोर से ये सेलिब्रेशन मनाए जाएंगे। तो अभी से हम सबको तैयारी करनी है उसके, है ना, गियर अप हो जाइए। आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद के सेंटेनियल में भाग लिया था 1996 में, प्रभुपाद की जब शताब्दी मनाई गई थी, 100 वर्ष पूरे हुए थे, कितने भक्त जोर से हाथ खड़ा किया गया? एक ही भक्त है हमारी पूरी सभा में। तो देखिए, वो तो हम नहीं मना पाए प्रभुपाद के 100 वर्ष पूरे हुए, और आप में से कितने भक्तों को पूरा विश्वास है कि इस कौन की शताब्दी 100 वर्ष हम मना लेंगे, 100 वर्ष तक रहेंगे, अगले 50 वर्ष और, पूरा विश्वास है? कह नहीं सकते। तो खाली ये मौका आया है कि ये 50 वर्ष तो कम से कम पूरे जान लगा के, तो उसमें क्या करना होगा, खूब उत्साह से हमें प्रभुपाद के बारे में जानना होगा, प्रभुपाद के बारे में ज्ञान फैलाना होगा, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इस्कॉन के विषय में जानना बताना, और जन साधारण को इस आंदोलन से जोड़ना, ताकि हम लोगों के पास जो धन है, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, लेकिन जितने भी आने चाहिए लोग उतने हम आकर्षित नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये सब मेंटली अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे तैयार करें, प्रभुपाद के विषय में ज्यादा से ज्यादा पढ़े और सुने, तब मालूम चलेगा ये स्कॉन संस्था कैसे खड़ी हुई और क्या क्या मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। ओके, तो ये प्रभुपाद की कृपा से जितने भी तरह तरह के जनजाति के लोग थे, सबने प्रभुपाद की शरण ली, और आज हम देखते हैं चाइना जैसे देश में कितना सुंदर प्रचार हो रहा है ना। हमारे भक्त गए थे चाइना में, और वो चाइना की मार्केट से निकल रहे थे, आजकल बिजनेस के लिए लोग जाते हैं, तो उस मार्केट में शहर का नाम भूल गया क्योंकि बड़ा अजीब सा नाम था, तो उस मार्केट में उनको सुनाई दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्केट के अंदर कीर्तन चल रहा है, तो भाग के उस शॉप में गए, तो वो सीडी चल रही थी, तो बोले सीडी बेच रहे हैं वहां पे, तो वो सीडी लेके रहा है वहां से। तो चाइना के मार्केट्स में हरे कृष्णा कीर्तन की सीडी इतनी जोर शोर से बज रही है, मार्केट में कौन सी सीडी बजती जो मोस्ट पॉपुलर हो, तभी बजेगी ना। इंडिया में तो बच्चे नहीं हरे कृष्णा की सीडी पॉपुलर नहीं है, चाइना की मार्केट में हरे कृष्णा कीर्तन की सीडी बज रही है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं उसको। और चाइनीज गवर्नमेंट, आप सब जानते हैं, भगवद गीता चाइनीज भाषा में छापी है, और श्रीमद भागवतम भी चाइनीज भाषा में छाप रहे हैं। तो ये कैसे है, सब प्रभुपाद जी की शरण में आए सब लोग, ये चमत्कार होते हुए देख रहे हैं जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो कितनी विशेष बात है। प्रभुपाद के अतिथियों ने कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उन्हें पुनः आमंत्रित किया, और स्वामी सुशील ने अपनी ओर से जोड़ा, आज आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हम किसी समय आपको अपने योग धर्म की बैठक में बुलाना चाहेंगे। प्रभुपाद ने कहा हम आएंगे, आपके फेलोशिप का क्या हुआ? स्वामी चिदानंद बोले इसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन कहते हैं। यूनिटी ऑफ मेन कॉन्फ्रेंस योगी जी का संगठन है। योगी भजन कौन थे? सिख धर्म के नेता थे। योगी भजन ने पूर्व आमंत्रण का उल्लेख करते हुए कहा, हमने उसमें आपको आमंत्रित किया था, स्वामी चिदानंद बोले, किंतु अब दूसरी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। योगी भजन ने कहा, हाँ, दूसरी बैठक मैक्सिको में है, हम उसमें भी आपको बुलाएंगे। श्रीला प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है कि एकता होने की नहीं। इस स्पष्ट टिप्पणी से सब हंसने लगे। ये सब प्रयास कर रहे थे कि जितने अलग अलग धर्म है सबको एक किया जाए। तो पवन बोला, जितनी मर्जी आप कॉन्फ्रेंस कर लो, ये एकता होने वाली नहीं है। प्रभुपाद का विश्लेषण का स्मरण करते हुए स्वामी चिदानंद ने कहा, आप कहते हैं जब तक प्रत्येक मनुष्य भगवत चेतना में नहीं हो जाता तब तक एकता क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, भगवत चेतना में नहीं होंगे, तब तक एकता नहीं हो सकती। योगी भजन बोले, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब हर एक इस चेतना में हो जाएगा, इसमें बड़ी बात क्या है। प्रभुपाद कहने, आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, एकता नहीं होने वाली, क्योंकि आप भगवत भाग में अमृत नहीं हो रहे, गॉड कॉन्शियस नहीं हो रहे। तो योगी भजन जी ने बोला, जो सिखों के नेता थे, कि ये तो ईश्वर की इच्छा से हो जाएगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। प्रभुपाद ने कहा, भगवान स्वयं कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है, इस संसार में कोई सदा नहीं रह सकता, यहां से सबको जाना है। मुख्य समस्या जन्म मरण वृद्धावस्था और रोग की है, हम इनका समाधान पाने की चिंता नहीं करते, किंतु यही मुख्य समस्याएं हैं। स्वामी चिदानंद ने पूछा, हम जन्म वृद्धावस्था रोग और मृत्यु के विषय में क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता का उपदेश सुनाते रहे। प्रभुपाद के अतिथि प्रत्यक्षता उनसे कोई असहमति ना जताते हुए सम्मान पूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और उनसे प्रश्न करते रहे। उन्होंने प्रभुपाद को हिंदू धर्म के प्रसार की क्षमता रखने वाला एक महान आध्यात्मिक गुरु माना। श्रील प्रभुपाद की। योगी भजन बोले, वे महान हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि वे ये कैसे कर सकते हैं। वार्तालाप का विषय बदला और प्रभुपाद ने कहा कि योगी भजन सिख संप्रदाय के हैं, जो अपने वीर लड़ाकों के लिए विख्यात हैं। श्रील प्रभुपाद बोले, अंग्रेज लोगों को पराजय देने वाले सिख थे, मैंने इसे देखा है, यह केवल सिखों के कारण था। सिख क्षत्रिय हैं, उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। स्वामी सुशील बोले, हाँ, मैंने अपने कुछ छात्रों से कहा है कि तुम लोग प्रभुपाद जी के पास जाओ और वे तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय बना देंगे। प्रभुपाद, हाँ, हम इसी तरह सहयोग करें, आप क्षत्रियों का काम करें और हम ब्राह्मणों का काम करें। अब सुनिए ध्यान पूर्वक, ब्राह्मणों के लिए दिमाग की जरूरत है, क्षत्रियों के लिए बल की। प्रभुपाद सीधा बोल रहे, दिमाग हमारे पास है, हम ब्राह्मण बनेंगे, आप क्षत्रिय बने। अहिंसा की बात चली तो शिला प्रभुपाद ने तर्क दिया कि यदि कोई भगवत चेतना युक्त नहीं बनता तो निस्संदेह वह हिंसक बन जाएगा। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, तो इसके बारे में बताइए। अहिंसा के विषय में प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई भगवत चेतना युक्त नहीं बनता तो वह निस्संदेह हिंसक बन जाएगा। कैसे समझेंगे स्टेटमेंट को, कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो बहुत वायलेंट होगा, हिंसक होगा। स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूफ करेंगे, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हाँ जी, कृष्ण नाम देना ही सबसे बड़ी दया है। क्यों कृष्ण नाम देना सबसे बड़ी दया क्यों है, तो उससे क्या अहिंसा कैसे होगी, वो हम हिंसा से कैसे बच रहे हैं। कृष्ण महानामृत होके अपने प्रति हिंसा है। चलो एक पाठ ले, यस साक्षी नारायण। तो अपने प्रति हिंसा हो। यस महाराज।
वेल एवरीथिंग दैट डजंट पुश अदर जीवस टुवर्ड्स कृष्णा इज वायलेंस बिकॉज़ इट्स आइदर यू आर हेल्पिंग पीपल टू गो टुवर्ड्स गॉड और यू आर हेल्पिंग देम टू गो टुवर्ड्स डेथ। There's not even a gray zone, you know. So that, for that reason, it's considered violence. Avaishtama, even language is considered violence if it is not glorification of the Supreme Lord, because it's misleading. It brings him on the path to death, repeated cycle of birth and death. So that's violence. So what, just like you kill somebody, it's called violence. Everybody knows that. But that other kind of more subtle form of violence, that if you just talking prajalpa is also violence, because you're not helping that person towards God. Therefore, they are you're making violence upon them even with words.
Yes, thank you very much, Maharaj. Yes. Wonderful translation.
Maharaj बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत के संदेश की ओर किसी को धके नहीं रहा, तो वह उसको जन्म मृत्यु के जो उसका चक्र है वो उसी में फंसा रहेगा। अगर कोई किसी को मारता है या किसी की हत्या करता है तो हम उससे हिंसा समझते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण भावनामृत की ओर किसी को नहीं ले जा रहा या खुद नहीं बन रहा या फिर चाहे वे प्रजल्पा ही क्यों ना कर रहा हो, तो हम उसे परम सत्य से दूर ले जा रहे हैं और वो बार बार मृत्यु के इस चक्र में फंसता रहेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी हिंसा है।
थैंक यू सो मच मैडम, वंडरफुल पॉइंट। तो देखिए, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कृष्णा भावनामृत नहीं है तो हम हिंसक हैं। और क्योंकि महाराज बता रहे हैं, अगर हम खुद ही कृष्णा भावनामृत नहीं है और दूसरे को कृष्णा भावनामृत देने के लिए आगे पुश नहीं कर रहे, तो हम क्या करें, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। और अगर हम देखें जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भौतिक जगत में हिंसा ही हिंसा है। जब हमारा जन्म होता है इस संसार में, कितना खून बहता है, खून से लथपथ रोता हुआ बच्चा, माँ के गर्भ से ही हिंसा शुरू हो जाती है। बच्चे को कितने कीड़े मकोड़े काटते हैं, बच्चा कितना पीड़ा महसूस करता है, कितनी बड़ी हिंसा है। और उसके बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो कितनी हिंसा है। आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन से निकाला जाता है, काट पीट करके, कितनी बड़ी हिंसा है। उसके बाद छोटा बच्चा ही जब होता है तो कुछ बोल नहीं सकता, उसको कीड़े मकोड़े काटते हैं, मल मूत्र में पड़ा रहता है, रोता है, बिखलाता है, रोता है, वो भी हिंसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन भर में हम कितने मेडिसिन खाते हैं, एक एंटीबायोटिक खाते हैं लाखों बैक्टीरिया को मार देते हैं। और हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो और आप अपना यूरिन टेस्ट वगैरह कराएंगे तो आपने कभी बैक्टीरिया काउंट देखा कितना होता है? वो बैक्टीरिया काउंट बताते हैं 10^5, यानी कि लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। और हम बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सारे बैक्टीरिया को मारते हैं, सांस लेते हैं तो हिंसा कर रहे हैं, रास्ते में चलते हुए कितने कीड़े मकोड़ों को मारते हैं तो हिंसा है ही है। और फिर बुढ़ापे के समय 40,000 बिच्छू एक साथ हमें काटेंगे, ये हिंसा है। पूरा जीवन हिंसा ही हिंसा है अगर हम कृष्णा भावना भावित नहीं है। तो कृष्णा भावना भावित होना और इसका प्रचार करना, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। इसलिए बोला जाता है जो प्रचार नहीं कर रहे वो सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। और जो तथाकथित सो कॉल्ड समाज सुधारक संस्थाएं हैं जो बोलते हैं कि हम अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं और वो किसी को कृष्ण भावनाभावित नहीं बना रहे, वो सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। जैसे हमारे तथाकथित बड़े बड़े नेता, वो कहते हैं कि भगवद गीता में हिंसा का उपदेश दिया गया है, भगवान ने हिंसा का, इसलिए वो भगवद गीता को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवद गीता सबसे बड़े अहिंसा का उपदेश दे रहा है कि कैसे कृष्ण भावनाभावित होया जाए। तो इस बात में हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि हमें भगवत चेतनायुक्त होना है और इसका प्रचार करना है। Not to preach is the biggest violence, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं। क्योंकि प्रचार करके ही हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हैं। और जन्म मृत्यु के चक्कर में कोई पड़ा रहा तो कदम कदम पर हिंसा है। योगी भजन आगे बोले, हाँ जब उनमें समझ आती है तो वो ईश्वर का स्मरण करते हैं। प्रभुपाद हंसते हुए बोले, यहां पश्चिम में केवल हिंसा है, अन्य कोई वस्तु नहीं। प्रभुपाद के अतिथि उनके साथ हंसने लगे। बाद में उन्होंने कुछ फोटो खिंचाए और श्रील प्रभुपाद ने उन दोनों को अपने कुछ शिष्य उन दोनों को और अपने कुछ शिष्यों को आमंत्रित किया कि सब एक साथ बैठकर कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करें। तो ये प्रभुपाद की हॉस्पिटैलिटी है, कैसे अतिथियों का सत्कार करते हैं प्रभुपाद। अलग अलग धर्म से लोग आए हुए और सबको प्रभुपाद ने बैठा कर अपने शिष्यों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। शिला प्रभुपाद ने अगले दिन सैन फ्रांसिस्को में होने वाली रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपने अतिथियों को आमंत्रित किया और वो सहमत हो गए। जगन्नाथ रथ यात्रा की, आज जगन्नाथ रथ यात्रा में आपको ले जाते हैं सैन फ्रांसिस्को में, जुलाई 20, 1975। यह इस्कॉन की अब तक की गई ना केवल सबसे बड़ी रथ यात्रा थी, वरन भक्तों का आज तक का सबसे विशाल जमघट था। इस वर्ष इसके पहले मायापुर में हुए जमघट से भी बड़ा। जय महाराज युवा देव हुई रथ यात्रा।
Middle West. I was already in St. Louis, middle of the United States, so I wouldn't have been there.
Okay. उत्सव स्थल की तैयारियों में प्रसाद वितरण के बूथ, अर्चा विग्रहों की साज सज्जा की प्रदर्शनी, स्मारिकाएं और प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रदर्शनी सम्मिलित थी। गोल्डन गेट पार्क से गुजरने वाले जुलूस में 800 से भी अधिक भक्तों के साथ हजारों अन्य लोग शामिल हुए। रथ के निर्माताओं ने सामान्य काठ के पहियों के स्थान पर स्टील के पहिए लगाने का निर्णय लिया था। एक ऐसा रथ था जिसमें लकड़ी के पहिए नहीं थे, किसके पहिए थे, इसलिए कठिनाई पैदा हुई। शिला प्रभुपाद ने आगाह किया था, प्रभुपाद ने पहले वार्निंग दी थी, यह तुम्हारा अमरीकी रोग है कि परिवर्तन करते रहो, पुराने डिजाइन को मत बदलो, प्रभुपाद ने पहले बोला था। प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को बोलते थे, अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को, कि आप लोगों की डिजीज है, यू ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स। एक चीज से आप बोर हो जाते हैं और फिर आप चीजें बदलते रहते हैं। लकड़ी के पहिए हैं सही चल रहे हैं, अब स्टील के बना दिए, और जब स्टील के पहिए बना दिए रथ चल ही नहीं रहा, लेकिन वे बदल चुके थे। सुभद्रा के रथ में सवार होने के कारण प्रभुपाद को कोई व्यक्तिगत असुविधा नहीं हुई, क्योंकि उसके पहिए काठ के थे, किंतु अन्य दो रथ ठीक से नहीं चल रहे सके। वे इतने जोर से हिलने लगे कि जुलूस के बीच उनकी अरों में सहायता के लिए धरने लगानी पड़ी। शीघ्र ही पहियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया और वो इस तरह चरमराने और खड़खड़ाने लगे मानो गिरने वाले हों, किंतु किसी तरह बड़ी कठिनाई के साथ तीनों रथों ने अपना मार्ग तय किया। रथ यात्रा के कार्यकलापों के मध्य एक भक्त ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे जगन्नाथपुरी में कभी किसी रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्रभुपाद आप कभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में गए थे। आप लोगों का क्या कहना है, आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या होता है। प्रभुपाद का उत्तर सुनिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपनी निजी रथ यात्रा निकालता था। यह है प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस। देखिए प्रभुपाद बोला, मैं नहीं जाता था जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, मैं अपनी निजी रथ यात्रा निकालता था। तो प्रभुपाद 5 वर्ष की आयु से ही रथ यात्रा निकालते थे। ये दिखाते हैं प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं है। शिला प्रभुपाद की, ये प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस। ये हमें प्रभुपाद का ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बहुत अभिमान है, ऐसी बात नहीं है। एक बारी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद की बातचीत हो रही है एक वैज्ञानिक से, डॉक्टर बेनफोर्ड। तो डॉक्टर बेनफोर्ड प्रभुपाद से पूछते हैं, व्हाट विल हैपन टू यू एंड योर डिसिपल्स नेक्स्ट, आपके और आपके शिष्यों के साथ अब आगे क्या होने वाला है। तो प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, वी आर गोइंग बैक टू गॉड, हम भगवत धाम वापिस जा रहे हैं, बिकॉज वी नो एवरीथिंग, वी नो कृष्णाज नेम, कृष्णाज एड्रेस, कृष्णाज फॉर्म, एवरीथिंग वी नो, एंड कृष्णा हैज टोल्ड अस इन भगवत गीता, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः, सो वी आर गोइंग बैक टू गॉड। तो ये प्रभुपाद का आत्मविश्वास है शास्त्रों में, और यही आत्मविश्वास हम सबके अंदर होना चाहिए। हमें प्रभुपाद पे पूरा फेथ, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और ये श्रद्धा हम और मजबूत कर सकते हैं प्रभुपाद के विषय में ज्यादा से ज्यादा हम चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद के पास टाइम्स पढ़ें, समझें, उनसे शिक्षाएं लें। और हमारा इतना सौभाग्य है कि प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद की एक एक चीज की रिकॉर्डिंग कर रखी है ना, प्रभात की मॉर्निंग कन्वर्सेशंस, प्रभात की रूम कन्वर्सेशंस और प्रभात के सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, अलग अलग डायरीज हैं। तमाक्षण गोस्वामी महाराज ने डायरीज लिखी, हरीश्वरी प्रभु ने डायरीज लिखी हैं, सत्स्वरूप महाराज जी ने कई बुक्स लिखी हैं। ये सारी बुक्स इतना अथाह इंफॉर्मेशन है प्रभात के विषय में, प्रभात के विषय में कई वीडियोज हैं, तो ये सब हमारे पास होना चाहिए। अगर इसमें हम कंजूसी करेंगे, नहीं क्या जरूरत है, ये पूरा हम सबके पास होना चाहिए और इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाके हम कुछ रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ प्रभुपाद कितने महान हैं। भगवान कपिल देव माता देवती को बताते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में। माता देवती ने प्रश्न पूछा था भगवान कपिल से कि मैं इस संसार में इंद्र तृप्ति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गई हूँ, इससे मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, इस संसार में मेरी इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है। तो भगवान कपिल ने उत्तर दिया, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानः कवयो विदो सा एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि ये जो प्रसंगम है, जो हमारी आसक्ति है, अजरम है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ते। हम वृद्ध हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं वृद्ध नहीं होती। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, शंकराचार्य भी कहते हैं। तो हमारी जो आसक्ति है संसार के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? यही आसक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन है, ये बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं। लेकिन इसी आसक्ति को क्या कहना है, साव साधुषु कृतो, इसी आसक्ति को हम संसारिक वस्तुओं से हटाकर साधुओं के प्रति लगा देंगे, मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और सबसे विशेष जो साधु हैं हमारे हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो श्री प्रभुपाद से हमें अपनी आसक्ति बढ़ानी है, तो प्रभुपाद से आसक्ति बढ़ गई, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे और हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा, केक वॉक। क्योंकि प्रभुपाद के जीवनी से हमें मालूम चलेगा, प्रभुपाद चारों आश्रम में रहे, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास। आप जिस भी आश्रम में हैं, जो मुश्किल आ रही है प्रभुपाद लीला में उठाइए, प्रभुपाद के पत्र पढ़िए, प्रभुपाद के अलग पुस्तकों पढ़िए, आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि प्रभुपाद ने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया। बस देखिए उसको हम अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस ढंग से हम प्रभुपाद के विषय में अपनी आसक्ति को बढ़ाएं और इस मोमेंट को खूब आगे बढ़ाएं। ये हमारा विशेष प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का तरीका होगा। प्रभुपाद से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद हम कैसे इस ऋण को चुकता सकते हैं। सो प्रभुपाद ने बोला कि एक शिष्य बहुत बड़ा मूर्ख होगा अगर वो सोचेगा कि मैं अपने गुरु का ऋण चुकता सकता हूँ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने बोला, डू एज आई एम डूइंग, वैसा ही करो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कैसा किया उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा कि प्रभुपाद ने क्या किया। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आज एकादशी के दिन आप प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ना शुरू कीजिए या पढ़िए। जिनके पास नहीं है वो प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ ले, जिनके पास प्रभुपाद लीलामृत है वो प्रभुपाद के विषय में दूसरी पुस्तकें ले सकते हैं और अपने जीवन को हम सफल बनाए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी महोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की गौर प्रेमानंदे। महाराज एनी कमेंट्स यू वांट टू?
वेल दिस इज अ फ्यूचर कंट्रोवर्सी। It's not a controversy yet, but you read about the wheels. First of all, I was there in 1970, the first scale model built of the Puri Rath Yatra with giant wooden wheels, about 6 meters tall.
Maharaj कह रहे हैं कि ये future की controversy है, अभी वर्तमान की नहीं। महाराज बता रहे हैं कि मैं 1975 में तो नहीं था परंतु 1970 में था जब जयानंद प्रभु ने रथ बनाया था और उसके जो पहिए थे लगभग 6 फीट बड़े थे।
So then when the devotees changed to metal wheels instead of wooden wheels, then Prabhupada was displeased.
जब भक्तों ने लकड़ी के पहियों की जगह स्टील के पहिए लगाए तो श्रीला प्रभुपाद इससे खुश नहीं थे।
Why you Americans have to change everything?
उन्होंने कहा कि आप सब अमरीकियों को बार बार चीजें बदलते क्यों रहते हो.
But now we are the International Society for Krishna Consciousness. So it's not just Indians that are changing everything. I mean, not just Americans are changing everything, but all over the world the devotees are changing everything.
अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हैं. तो अब सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, पूरे विश्व में भक्त लोग चीजों को बदल रहे हैं.
So it's only a matter of time. It's not an issue yet, but it will become an issue eventually about, for example, our rough cars in India, you know, with a truck chassis and rubber truck tires not even disguised. So if Prabhupada didn't even like the metal wheels, we can understand that India is going to have to upgrade the rough cars. This is, we should understand that point from this discussion. India is going to have to surrender to upgrading the rough cars the way Prabhupada wants them. And before I die, I'll make it an issue. But for now, I mean, I don't, you know, we make do for now. But in, before I'm dead, it will be an issue that we have to make the rough cars in India the way Prabhupada wants them.
तो अगर हम देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद इस चीज से खुश नहीं थे कि किसी ने पहिए बदल दिए, तो विशेषकर भारत में जिस प्रकार से हम रथ यात्रा निकालते हैं वो ट्रक के हिसाब से जो चलती है, तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, परंतु भविष्य में निश्चित रूप से हम इसको अपग्रेड करेंगे, करना होगा कि श्रीला प्रभुपाद की जैसी इच्छा थी रथ की उस प्रकार से बनाए. महाराज कह रहे हैं कि मेरे शरीर छोड़ने से पहले मैं ये इशू दूंगा.
Yeah.